हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अमन नहीं चाहता था कि मिस्टर जिंदल को आंशी के विधिक की गर्लफ्रेंड होने की बात पता चले। उसके अलावा वहाँ कोई नहीं जानता था कि आंशी उनकी बेटी है। उसने किसी और के जवाब देने से पहले जल्दी से कहा, वो सब बाद में सोच लेंगे, पहले इस पर काम करते हैं। मेरे माइंड में कुछ थॉट आया है, हम उसके जरिए मेलिसा तक पहुँच सकते हैं। उसका इस तरह बात को टालना मिस्टर जिंदल को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत कहा, मैं भी इस केस पर काम कर रहा हूँ और इस केस से जुड़ी सारी बातें जानने का मुझे हक है। तुम लोगों को मुझ पर यकीन ही नहीं है तो सॉरी टू से, मैं इस केस पर काम नहीं करना चाहता। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है सर, आपकी काबिलियत पर शक करना सूरज की रोशनी पर शक करने जैसा होगा, मिस्टर दत्त ने कहा। एक्चुअली हमारे पास विधिक की सबसे बड़ी कमजोरी है, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता है और अब वो हमारे पास है, हमने उसे अपने विश्वास में ले लिया है। अगर वो लड़की विधिक के पास चली जाए और उसकी सारी खबरें हम तक पहुंचाती रहे तो वो दिन दूर नहीं जब विधिक जेल की सलाखों के पीछे होगा, लावण्या ने कहा। उसके सब कुछ बताने पर अमन ने अपना सर पकड़ लिया। उसने लावण्या की बात के जवाब में कहा, शी इज इनोसेंट और हमें उसका यूज नहीं करना चाहिए, उसकी जान को खतरा हो सकता है। अमन के एजेंट होने का पता चलने के बाद मिस्टर जिंदल उसकी हर बात के ऑपोजिट बोल रहे थे। उन्होंने कहा, मुझे मिस बजाज का प्लान अच्छा लगा, जब हमारे पास हुक्म का इक्का है तो हम इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, हमें उस लड़की को विधिक राणा के पास भेजना चाहिए। सारी प्रॉब्लम की जड़ वही है, जब तक जड़ को नहीं काटोगे पेड़ तो पनपता रहेगा ही। पर हम उसकी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकते, आपने कल उसे देखा होगा, उसे हम पर कितना यकीन है, कितने भरोसे के साथ वो हम सबकी तरफ देख रही थी और बिना डरे हमें सब बताया ताकि हमारी हेल्प हो सके, हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते, जस ने कहा। वो आंशी को विधिक के पास भेजने के सपोर्ट में नहीं था। मिस्टर गुप्ता भी उसकी बात से सहमत थे। उन्होंने कहा, जस ठीक बोल रहा है सर, वो विधिक के साथ रही थी तब उसे उसकी सच्चाई नहीं पता थी, वो उसका गुस्सा और दरिंदगी झेल नहीं पाएगी, प्लीज सर हम कुछ और सोच लेंगे। उन सब के आंशी को सपोर्ट करने पर लावण्या उनकी तरफ गुस्से में देख रही थी, वहीं मिस्टर जिंदल भी हैरान थे। पहली बार उन्होंने किसी क्रिमिनल के साथी के साथ एजेंसी वालों को इतनी नरमी करते देखा था। हमने भी कुछ ऐसा ही सोचा है सर, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली केस के चलते दो दिन पहले अमन को उस लड़की से शादी करनी पड़ी और अगर उस मिस्टर तेज प्रताप अपनी बात उनके सामने रख रहे थे। आधी बात सुनने के बाद मिस्टर जिंदल ने अमन की तरफ देखा, उसने बिना कुछ कहे हाँ में पलके झपकाई, वो उनका इशारा समझ पा रहा था। अमन को अब बाकी लोगों से सच छुपाना सही नहीं लगा। उसने शांत आवाज में कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट मिस्टर जिंदल कोई और नहीं आंशी के फादर हैं। जैसे ही अमन ने सच बताया एक पल के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। क्या सच में, क्या ये बात सच है कि आंशी उस क्रिमिनल, वो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? नहीं, वो उसे कभी नहीं मिली होगी, वो हमेशा से लंदन में रहती है, मैंने उसकी पूरी सिक्योरिटी, मैंने उसकी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा है, वो कभी पेरिस गई ही नहीं। आंशी का अमन से शादी करने से ज्यादा मिस्टर जिंदल को इस बात का झटका लगा था कि वो विधिक की गर्लफ्रेंड रह चुकी है, एक ऐसे इंसान की कमजोरी बन चुकी थी जो न केवल उसके लिए बल्कि इस देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। उनके लिए इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। अमन ने उन्हें पानी का ग्लास दिया, वो एक ट्रिप पर गई थी और वो विधिक सच्चाई से अनजान थी, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं बिल्कुल भी अच्छा पिता नहीं बन पाया, पहले अपनी बेटी की ठीक से परवरिश नहीं कर पाया और उसके बाद वो किससे मिलजुल रही है उसके दोस्तों तक का मुझे नहीं पता था। वो तुमसे प्यार करती थी, तुमसे शादी तक करके आ गई, पर मुझे ये और के जरिए पता चला। शिव की आवाज़ भारी हो रही थी, उनके सारे जज्बात बाहर आ रहे थे। तभी लावण्या ने कहा, हमें भी उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो आपको भी गैंगस्टर समझ रही थी, पर आपको मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, अमन और आंशी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वो किसी सिचुएशन में फंस गए थे और वहाँ से निकलने के लिए इमरजेंसी में उन्हें ये शादी करनी पड़ी। कोई भी प्लान पर काम करो, पर मेरी बेटी उस विधिक राणा के सामने नहीं जानी चाहिए, मैं अपनी जी जान लगा दूंगा उसे बचाने के लिए, मिस्टर जिंदल ने सख्त आवाज में कहा। उन्होंने फिर अमन की तरफ देखा और बोला, तुमने किसी भी सिचुएशन में उससे शादी की होगी, पर प्रॉमिस करो कि कभी उसे विधिक राणा के सामने। बोलते हुए मिस्टर जिंदल रुक गए, उन्हें याद आया कि सिर्फ अमन की वजह से ही वो लोग प्लान थर्ड की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और धीमी आवाज में उससे कहा, थैंक्स। अमन ने बिना कुछ कहे उनकी तरफ पलके झपकाए। तेज प्रताप दत्त उनकी बातें सुनने के बाद बोले, तभी मैं सोचूं उस बच्ची को देखते ही एक लगाव सा क्यों महसूस होता है। वो कल यहाँ आई थी तो एक पल के लिए भी महसूस नहीं हुआ। आंशी को पहली बार मिल रहा हूँ, मानना पड़ेगा उसकी किस्मत काफी तेज है सर। बचपन से ही मौत का सामना कर रही है पर आज भी उसी जिंदा दिली से जी रही है। किस्मत अच्छी नहीं, तेज, काफी खराब है। उसे इन सबसे बचाने के लिए हमेशा अपने से दूर रखा। वो बार बार शिकायत करती रही फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके पास नहीं गया और आज ये सब सुनने को मिल रहा है। मिस्टर जिंदल भावुक हो रहे थे। तेज प्रताप दत्त ने उनका हाथ सहलाया और कहा, घबराइए मत सर, हर बार की तरह वो अपनी किस्मत को मात देकर अपनी खुशियाँ हासिल कर ही लेगी। उसके बाद उन्होंने अमन की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें भी कुछ याद नहीं है? मतलब मुझे कुछ याद नहीं है? क्या मुझे कुछ याद होना चाहिए? क्या मुझे कुछ याद होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, तुम तो उसे बचपन से जानते हो, फिर उसे भूल कैसे सकते हो? मिस्टर दत्त ने जवाब दिया। उनकी बात सुनकर हर कोई उनकी तरफ हैरानी से देख रहा था। अमन को खुद भी याद नहीं आ रहा था कि वो बचपन में कब और कहाँ आंची से मिला था।